اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن، صلوات پڑھے محمد والا. حضرت امام رضوی کالج بامبے کی آٹھویں مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر، تربیت اولاد، ہاؤ ٹو اپبرنگ اور چلڈرن ان 21st سینچری. مسلسل آپ سے معروض کر رہا میں 7 دن سے، اور آج آٹھویں مجلس ہے اور کل اس کا کنکلوژن ہے. سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں اگر سمجھے تو، اور اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچا لو، پروٹیکٹ کر لو، اس لیے کہ یہی اولاد ہے جو تم کو تمہارے لیے کچھ کرے گی. اگر تم نے کچھ اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو نقصان تمہارا ہے. کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ اگر بچے دیندار نکلتے تو ہم سب کا فائدہ ہے، ان پیرنٹس کا فائدہ ہے کہ جن کو اللہ نے اولاد دی، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس ذکر کو، ان اعمال کو ساتھ رکھنے کا. جتنا انسان اولاد کو اچھا کرتا، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ اس کا بیٹا ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کو تربیت اچھی ہو. غریب بھی ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ صرف دنیا کی تربیت اگر اچھی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام یہ بولتا کہ دنیا کی تربیت کے ساتھ بھی اسلام کی تربیت بھی دو، اسلام کے بارے میں بھی بتاؤ، جس دین کو تم فالو کرتے ہو اس دین کو بتاؤ. اس لیے بتاؤ کہ یہ لوگ بعد میں پھر عمل کریں گے، یہ عمل کریں گے. اسلام یہ وہ مذہب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی کسی کو بتائی، چھوٹی سی چیز، اچھی بات، اس لیے کہ کربلا کا بیس ہی پورا امر بالمعروف کے اوپر ہے. امر بالمعروف یعنی اچھا کام، اچھی بات بتانا اور برے کام سے روکنا. پورا کربلا کا بیس چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، چھٹے امام نے جو اپنے جد مولا حسین کی زیارت کا گفٹ ہم کو دیا، زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ، یہ دونوں زیارت چھٹے امام سے ہمارے پاس آئی. چھٹے امام نے اس زیارت میں سلام کے بعد، زیارت وارثہ میں السلام علیکم یا وارثہ آدم و صفت اللہ سے لے کے سلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارے تک آلموسٹ 12 یا 13 مرتبہ سلام ہے. یعنی آپ کنٹینیو امام کو سلام کرتے، ویری ویری ریکمینڈیڈ زیارت. اسی زیارت میں جیسی سلام ختم ہوتا، اینڈ جب ہوتا سلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور، جیسی وہ ختم ہوتا امام نے سلام کے فوراً بعد وہ مقصد کو پیش کیا کہ میرا جد حسین کربلا کیوں آئے تھے، وائی ہی واز دیر، کیوں ہوا یہ پوری جو ٹریجڈی ہمارے سامنے، یہ پورا جو کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے، اس کا بیس بتایا کہ کیوں آئے تھے حسین نے. امام نے کیا کہا زیارت وارثہ میں کہ اشہد و ان کا خد اکم تھا صلاتا و آتائی تھا زکاتا و امر تبل معروف ہے و نہیں تن علمن کر. یہ جو جملے میں بول رہا جو زیارت وارثہ میں بھی ہے، عاشورہ میں بھی ہے، یہ کسی اور امام کی زیارت میں یہ جملے نہیں ہیں. آپ امیر المومنین کی زیارت پڑھو، اللہ کے رسول کی پڑھو، بیوی کی پڑھو، پورے معصومین کی پڑھو، کسی میں یہ نہیں ہے کہ اشہد و ہم وٹنس بنتے، ہم وٹنس بنتے، ہم گواہی دیتے کہ مولا حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، आपने ज़कात अदा की, उसके बाद का जुमला जो है कि आपने अमरे बिल मारूफ किया और आपने नहीं अनिल मुनकर किया। जो करबला की ये पूरी ट्रेजडी है, ये करबला का पूरा जो वाकया है उसकी बुनियाद क्या है, मौला इमाम हुसैन क्यों आए थे करबला, कि करबला सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि नमाज को बचा लो या रोज़े को बचा लो, हुसैन पूरे इस्लाम के साथ अमरे बिल मारूफ करने, अमरे बिल मारूफ इन्हें अच्छे काम की दावत देने के लिए। आज हम जो बोलते कि इस्लाम बचा हुआ है करबला की वजह से, तो यही उसका रीजन है कि हुसैन ने करबला में बताया कि अमर बिल मारूफ क्या है और नहीं अनिल मुनकर क्या है, इन्हें अच्छे काम की दावत देना। तो हर शिया की जिम्मेदारी है, अब हर इमाम के चाहने वाले की जिम्मेदारी है कि करबला के इस बेस को, करबला के इस मकाम को, कि मेरा मौला क्यों आया था, तो मुहर्रम हमारे लिए एक रिमाइंडर होता कि हम कितने साल भर में अमर बिल मारूफ करें, हमने कितने बुरे कामों से लोगों को रोका हमने। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में जाके बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेजेस में जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाज़ार में जाके बोलो, मैं सिर्फ ये बोल रहा कि अपने बच्चों से, घर से शुरू करो। घर में तो अपने बच्चों को बोल सकते हैं ना कि बेटा ये करो ये नहीं करो, इस्लाम में ये जायज़ है ये जायज़ नहीं है। अगर आपने बताना शुरू किया अपनी औलाद से तो तुम्हारी औलाद प्रोटेक्टेड हो जाएगी, तुम्हारी औलाद की हिफाजत हो जाएगी। वरना दोस्तों आज के दौर में आप ज़रा आँखें खोल के देखो कि आज के दौर में किस अंदाज से औलाद दूसरे रास्ते पे चल रही। 25%, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा, 25% के करीब आज हमारा जो यूथ है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में चला गया, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में चला गया, इसलिए कि आज ये बच्चे छोटे हैं, कल एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, डिफरेंट कल्चर्स में जाएंगे। तो अगर इन बच्चों के बेस को तुमने स्ट्रांग नहीं किया तो उस कल्चर में जाके वो उसको अच्छी चीज़ देखेगी एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मालूम ही नहीं कि ये ख़राब चीज़ है, ये हराम है या हलाल है। तो ये सबसे पहले क्यों है बच्चों को बचाना, एजुकेशन अच्छा देने के बाद जब तुम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे डिफरेंट कल्चर्स में, आपको मालूम है कि वैसे का कल्चर क्या है, यू नो वेरी वेल इतना बुरा कल्चर है। दीनदार घर की बात कर रहा, फैमिलीज की बात कर रहा, उनका क्या हाल है, माँ बाप ज़रा बूढ़े हो गए घर में नहीं रखते, आपको मालूम मैं क्या बोल रहा, पेरेंट्स को घर में एक्सेप्ट ही नहीं करते, पूरा पेरेंट्स को लेके जाके ओल्ड होम्स में लग देते, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कम्युनिटी के लोगों के ओल्ड होम्स है वहाँ पे, गवर्नमेंट पे कर दी उनके जो फीस है गवर्नमेंट पे कर रही, अब माँ बाप कहाँ पड़े हुए, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ खाना क्या खा रहे, लास्ट डेज में वो खाना खा रहे जो हलाल नहीं है, इसलिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो खाना मिलता वही खाना है आपको। बेटा घर में है, बेटी घर में है, अपने अपने घरों में, माँ बाप कहाँ हैं, माँ बाप को लेके जाके ओल्ड होम्स में रख दिया, ये कल्चर आपके पास भी आएगा। बाज ऐसी फैमिलीज हैं वहाँ वेस्ट में कि जो इतने दीनदार है उनके बच्चों ने कहा कि नो हम अपनी माँ को किसी और जगह, इसलिए कि ओल्ड है कौन टेक केयर करेगा, लेके जाके वहाँ पे रख दो, वो उस ओल्ड होम्स में रख दो। वो कल्चर आपके पास भी आएगा। आज ये मत समझो कि हमारे पास ये कल्चर नहीं, हमारे पास भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, कल आ जाएगा ज़्यादा, इसलिए कि फिक्र बदल रही। अगर तुम्हारे बच्चे दीनदार होंगे तो तुमको लेके जाके वहाँ पे दफन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ तक देखा वहाँ पे कि अपने बाप मर गया, बेटा उस जगह पे नहीं है, कोई दूसरी जगह मीटिंग्स में गया हुआ है, उसने कहा ठीक है यार तुम ही दफन कर दो, मैं नहीं आ सकता। ये तो हाल है, जब आप टेक केयर नहीं करेंगे तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन करेंगे अपने ग्रैंड फादर्स के। तो इसीलिए इस्लाम बोल रहा, इस्लाम बोल रहा कि डरो उस लम्हे से कि जहाँ तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी बड़े होके, अगर तुमने इस्लाम नहीं बताया, दीन नहीं बताया। आप बोलो क्या मुहर्रम में मदरसों में आएंगे, आज यहाँ पे इतने लोग व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, बूढ़े हैं कुर्सियों पे बैठ रहे, वहाँ पे नहीं है, उनको कौन लेके आएगा ओल्ड होम से, हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग, औलाद तो इस काबिल नहीं है। अगर दीनदार औलाद होगी, इस्लाम को फॉलो करेगी, करबला को मानेगी, मौला हुसैन के टीचिंग्स को देखेगी, तो वो खुद अपने साथ कार में ड्राइव करके लाकर हुसैन की मजलिस में बिठाएंगे, रेस्पेक्ट करेंगे पेरेंट्स की। अगर तुमने औलाद को दीनदार बनाए नहीं छोड़ दिया तो इसका एंड क्या है? हम लूज कर रहे हैं हर चीज। आप इंसाफ से बोलो, आज वो माँ जो 9 महीने माँ बच्चे को पेट में रख कर पाली, दुनिया में लेकर आई है, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा? वो कहीं और जा रही, तुम्हारा बच्चा कहीं और जा रहा। इफ तुम इस्लाम नहीं बताओगे, दीन नहीं बताओगे, इस करबला के बारे में नहीं बताओगे, मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट मजलिस है, कल की आखिरी मजलिस है शब आशूर की, इस टॉपिक के ऊपर फिक्र करो मैं क्या बोल रहा। कुछ ही नहीं करते ना, अपने इस मासूम मेहमानों को बोल रहा, मेरी माँ बहनें हजारों की तादाद में मुझे रिजी कॉलेज बॉम्बे में सुन रहे, ये मजलिस लाइव जा रही डिफरेंट कंट्रीज में, मैं सबको बोल रहा, ये जो मासूम बच्चे हैं ना, माओं को करना क्या चाहिए? सिट विद योर किड्स, क्या करो हर दिन, जैसे आज 8 मुहर्रम है, उनको बताओ कि बेटा 8 मुहर्रम है आज। बच्चा पूछेगा व्हाट इज 8 मुहर्रम, तो उनको ये बोलो कि 8 मुहर्रम है ये बिल्कुल इमाम हुसैन की शहादत से एक दिन पहले का वो, टॉक अबाउट मौला अब्बास, कल भी जनाब हासिम पे बात करो, जनाब ओनो मोहम्मद के सेक्रीफाइस पे बात करो, फिर आशूरा आने से पहले बच्चों को इतना प्रिपेयर करो, इतना तैयार करो कि तुम्हारी कम्युनिटी का हर बच्चे को ये मालूम होना कि व्हाट इज आशूरा, ये मॉर्निंग डे क्यों है इनको मालूम है? बच्चों को बोल बताओ कि ये मॉर्निंग डे है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, इस दिन में कुछ नहीं करना, रेड लाल कपड़े नहीं पहनना, बड़े होके जॉब नहीं जाना, बच्चों को हॉलीडे दिलाओ। वहां पे आपको मालूम है वेस्ट में क्या करते, बाकायदा स्कूल से वो लोग ब्रेक लेते कि आज आशूरा का, स्कूल्स में बोलते कि हमारा रिलीजियस डे, तो हम भी यहाँ पे बच्चों से बैठ के जब तक तुम बात नहीं करोगे, जब तक बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगे अबाउट आशूरा, उन मासूम बच्चों को क्या मालूम है? तुम ऐसा ग्रूम करो बच्चों को, इस तरह लेके चलो जैसे हर अच्छी चीज बताते, हर गुड पार्ट जो जिंदगी की होती है, अच्छी चीज होती है, माँ बाप बताते बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, ये गलत है ये अच्छा है, बताते। उसी तरह करबला बताओ, उसी तरह विलायत अली बताओ, उसी तरह इमाम अली से की मोहब्बत दिल में डालो, जैसे तुम्हारे दिल में मोहब्बत तुम्हारी माँ ने डाला वैसे तुम भी अपने बच्चों को डालो। अगर नहीं करोगे तो डिजास्टर किसका है? अगर बेटा बड़ा भी हो जाए उसके बच्चे हैं, हमको ये करना है, ये जिम्मेदारी है, अमर बिल मारूफ यही है, करबला का बेस यही है। अगर तुमने एक अपने बच्चे को बता दिया, मैं बोलता स्टार्ट करो कैसे, माएँ बच्चों को गोद में लेके बैठते हैं, जब गोद में लेके बैठे तो जब बच्चा बोलने लगता ना, उसको ये बताओ कि बेटा 5 सलवात पढ़वाओ बच्चों से रोज, सिर्फ 5 सलवात। एक मासूम बच्चा, ये सब बच्चे मेरे सामने, अगर वो रोज माँ बाप के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक मील लेते, बच्चों को बोले बेटा जस्ट रिसाइट 1 टाइम सलवात, कितनी देर हो रही, फ्यू सेकेंड्स, वो स्कूल जाने से पहले सलवात पढ़े, स्कूल से आने के बाद जैसे एंटर होता वापस घर जब आता तो बच्चा आपको देख के सलाम अलैकुम बोलता, ये सिखाया तुमने, सिखा देना बच्चों को। उसी तरह बोलो मुहर्रम जब शुरू हुआ ना, तब मुहर्रम के ये पूरे 2 मंथ्स 8 डेज बच्चों को आदत कैसे डालो, इमाम हुसैन का वो 4 सलाम सिखा दो, कल बोला था मैं, आज उसकी डिटेल बोल रहा, 4 सलाम सिखाओ बच्चे को, जैसी घर में एंटर हो बच्चा दरवाजे में खड़े रह के बोले ये मासूम बच्चा सलाम अल हुसैन वाला अली अबन अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साहब अल हुसैन, वो बोल के घर में चले। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मासूम बच्चा जब सलाम करेगा हुसैन को, हुसैन पलट के तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसको देखकर जवाब देगा, निगाहे हुसैन अगर तुम्हारे घर के अंदर पड़ जाए तो सारी बरकतें आ गई, रहमत आ गई, आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसा खुल जाते हैं, जितने हर्डल्स है तुम्हारी लाइफ में वो सामने आ जाते। फिर ये बच्चे ने जो सलाम किया, और जब तक ये सलाम करता रहेगा हुसैन को, उसका सारा अजर तुम्हारे अकाउंट में आएगा। इंसान जब मर जाता उसके सामने ही जब ये सवाब नेमतें जो तुमने औलाद के साथ अच्छा काम किया, तो एक रोज मैशर एक माउंटेन की तरह जो है नेकियां खड़ी रहती, जो जो तुमने बच्चों को अच्छा सिखाया, जो बच्चे तुम्हारी तरफ से करें, एक पहाड़ की तरह नेकियां तुम्हारे सामने रहती। बंदा पूछेगा, रिवायत के जुमले, बंदा पूछेगा क्या परवरदिगार इतनी सारी नेकियां तो मैंने नहीं की, आई नो व्हाट आई हैव डन, तो आवाज आएगी कि जो तुमने औलाद को नेकियां सिखाई है उसका अजर है, तुम्हारा आमाल का फल्ला यहां आ जाएगा, तुम इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। और अगर औलाद ने कुछ नहीं किया, सिखाया ही नहीं, तो वहां पहुंचने के बाद, अगर गौर से सुनो, वहां पहुंचने के बाद मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। डे ऑफ जजमेंट में जाना तो है, डे ऑफ जजमेंट में सबको जाना है, रोज अलहम के सूरह में 10 मरतबा बोलते हो मालिक यौम दीन, मालिक यौम दीन, सूरह रहमान में बोलते हो खुल्लो मन अलैहा फान, वो दिन को अल्लाह डेली हैमरिंग कर रहा हमारे दिमाग को, लिटरली हैमरिंग है कि वो दिन को याद करो, जस्ट रिमेंबर डेट डे, रिमेंबर डेट डे, मालिक यौम दीन, वो दिन आने वाला है। अलहम के सूरह में नमाज में 10 मरतबा बोलते हो, हम बोल के तेज आगे बढ़ जाते हैं, हम रुकते नहीं उस पर, रुक के रियलाइज नहीं करते, रुक के सोचते नहीं व्हाट आई एम सेइंग, ये दिन कौन सा है, कौन सा दिन, किधर अल्लाह रिमाइंड कर रहा हमको एवरी डे 10 times, मिनिमम 10 times, मैक्सिमम तो 100 मरतबा भी हो सकता, तो क्या याद दिला रहा कि वो दिन आने वाला है। वो दिन अगर तुमने ये औलाद को नहीं बताया, अब सुनो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि औलाद ने तबाही की तरफ चला गया, ये औलाद पूछ रही भी नहीं, ड्रिंक्स करने लगी, ड्रग्स में चली गई, गुनाह कबीरा में चली गई, छोड़ दिया उसने, तो औलाद जब उसको जाएगी, उसको पनिशमेंट होगी, तुमने नहीं किए गुनाह, तुमने गुनाह नहीं किया, तुम्हारा आमाल सही है, तुमने नमाजें पढ़ी तुम, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाई, तुमने रोजे रखे बच्चों को नहीं बताया, तुम मजलिसों में आए लेकिन बच्चों को नहीं बताए, तुमने मातम किया लेकिन बच्चों को नहीं बताया, छोड़ दिया, क्या बैरियर हुआ, जब तुम जाओ, जब बच्चे जाएंगे अंदर, उनको पनिशमेंट स्टार्ट होगी, तो उस वक्त ये लड़के तुम्हारा ओन, योर ओन सन, योर ओन डॉटर, योर ओन सन, योर ओन डॉटर, जब उनको लेके जाएंगे पनिशमेंट के लिए, तो बोलेंगे परवरदिगार तू मुझे लेके जा रहा, मेरे माँ बाप को भी लेके जा, वहां बोलेंगे आप इसको एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट नहीं करो। सारे मासूमीन से ये हदीस है, अल्लाह का रसूल जिसको दुश्मन ने सादिक कहा वही कहा, उस वक्त बच्चे कहेंगे कि परवरदिगार हमारे पेरेंट्स को भी पकड़, पेरेंट्स तड़प के रोएंगे कि मेरी औलाद, मैंने दुनिया में इनके साथ इतना किया, मेरी बेटी मैंने क्या नहीं किया तेरे साथ, मेरे बेटे तेरे साथ मैंने क्या नहीं किया, मैं भूखी रही तुझे खाना खिला, बाप बोलेगा कि मैं ओल्ड ड्रेस पहनता था, जब जो ख्वाहिश तू करता था मैं तेरी ख्वाहिश पूरा करता था, मैं दो दो जॉब्स करके तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया हूं, और आज तू मेरी कंप्लेन कर रहा अल्लाह के सामने, वो भी ये दिन डे ऑफ जजमेंट में, आइदर जन्नत है या जहन्नम है उस दिन और कुछ नहीं। तो उस वक्त पेरेंट्स बोलेंगे कि परवरदिगार वाह किसने कंप्लेन की, तो बोलेंगे तेरा बेटा, तो बेटे को लाएंगे लिटरली सामने, बेटी सामने आएगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम माँ अपनी बेटी को देखेगी, बाप अपने बेटे को देखेगा, जमाना सदियां सेंचुरीज के बाद एक दूसरे से मुलाकात होगी, फरिश्ते पूछेंगे जानते हो इसको, बाप माँ है ना, ये बोलेगी हाँ मेरा बेटा है, ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर, तो फरिश्ते बोलेंगे तेरा बेटा और तेरी बेटी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है, पेरेंट्स शॉक में आ जाएंगे कि ये मेरी बेटी ने मुझे मेरे खिलाफ कंप्लेन की, बोलेंगे सुनो तुमने हर चीज बताई, इस्लाम बताया, तुमने टाइम स्पेयर किया, लिटरली लिटरली तुम्हारी कंप्लेन आने से तुमको भी लेके चला जाएगा, इसलिए कि वो लोग गुनाह में पड़े सिर्फ इसलिए कि तुमने उनको नहीं बताया अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये आपने सुन लिया, इसके बरक्स दूसरी साइड क्या है, अगर तुमने बता दिया कोई अच्छा काम, तुमने बताया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी अमल करेगी, बेटी अमल करेगी या बेटा अमल करेगा। मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी कोई खैरात सदका दे रही है, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी मजलिस में जा रही है, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी शब नमाज पढ़ रही, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी हिजाब कर रही, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रही, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी अपने हस्बैंड के साथ अच्छा है, मिसाल के तौर पे तुम्हारी बेटी गरीबों की मदद कर रही, ये सारा सवाब पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा। तारीख का मशहूर वाकया है, उस शख्स ने आके मदीने मुनवरा में अल्लाह के रसूल से क्या कहा कि मेरा बाप बीमार है, मेरी बहन इस वक्त मदीने में एक ही बेटी, और मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो मदीना शहर से बाहर है, बहुत पैसे वाले थे मदीने के, और मेरा ब्रदर इन लॉ जब जा रहा था मदीने से तो उसने मेरी बहन को अपनी वाइफ को कहा था कि तुम घर से बाहर नहीं जाना, सर्वेंट्स हैं, गुलाम हैं, कनीजे हैं, जो काम कराना तुम बच्चों से करो, सर्वेंट से कराना, आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन टू लीव द प्लेस, लीव द हाउस। उस इताअत गुजार बीवी थी, उसने कहा ठीक है, घर में हर चीज़ है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। जब बाप बीमार हो गया तो भाई ने आके कहा कि मेरी बहन को परमिशन दे दो या रसूल अल्लाह के वो आके अपने बाप से मिल ले, इसलिए कि शौहर का परमिशन नहीं है, आप दे दो। रसूल ने कहा मैं नहीं देता, हस्बैंड वो लड़ बह भाई चला गया, मैं शॉर्ट कर रहा वाकई को, मशहूर वाकया, चला गया घर को। फिर चार दिन के बाद आके कहने लगा अब मेरा बाप सीरियस हो गया, बहन घर से इसलिए नहीं आ रही कि हस्बैंड ने मना किया है, आप परमिशन देंगे वो आके देखेगी, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नहीं देता, चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद आके कहा मेरा बाप मर गया, बाप मर गया, आप परमिशन दे दो, गौर से सुनो, आप परमिशन दीजिए कि वो आए आके बाप को की डेड बॉडी देख ले, शौहर की इजाजत नहीं है कि वो बाहर आए। सरकार ने कहा मैं इजाजत नहीं देता, चला गया। बहुत शॉर्ट किया मैंने इस वाकये को। आठ दिन के बाद फिर वो भाई पलट के आया रसूल के पास मस्जिद में, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तेरे पास आज भी कोई मसला है, उसने कहा नहीं आज मसला नहीं है, आज मैं आपके साथ बैठने आया महफिल में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तेरे लिए और तेरे बाप के लिए, तेरी बहन के लिए गुड न्यूज़ है, रसूल बोल रहे गुड न्यूज़। अब इमेजिन करो, तब हर आदमी गुड न्यूज़ सुनना चाहता, उसने कहा प्लीज़ टेल मी क्या है गुड न्यूज़। कहा जब तेरा बाप मरा और उसको तूने लेके जाके नीचे दफन किया, दफन करने के बाद जब उसकी ग्रेव बंद हुई तो उसके आमाल इतने अच्छे नहीं थे कि वो सीधा जन्नत में जाता, उस पर अजाब आना था, हिसाब और किताब हुआ, अजाब आना था, लेकिन अल्लाह अजाब के फरिश्तों को नीचे भेज रहा था, वो लोग नीचे आ रहे थे, अल्लाह ने उनको बुला के जो रहमत के एंजिल से उनको भेजा नीचे। क्यों भेजा? कहा तुम जाओ। तो ये फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार इसके आमाल तो अच्छे नहीं है, तू मुझे बुला रहा है, हमको बुला रहा और अपनी रहमत भेज रहा है इसकी ग्रेव में, वहाँ तो आवाज़ आई इसकी बेटी ने इस्लाम पे अमल किया, रसूल की शरीयत पे अमल किया, रसूल ये बोल रहे कि शौहर की इताअत करो, उसने इताअत की, जिद नहीं की, एक मसले में सिर्फ एक मसला एक मसले में उसने अमल किया, अगर पूरा इस्लाम पे अमल कर ले तो कहा इसकी बेटी ने अमल किया इस्लाम के ऊपर तो हमने इसके बेटी के भी गुनाह माफ कर दिया, इसके बाप के गुनाह भी माफ कर दिए, एक मसले पे, जस्ट वन मसला, अभी पूरा इस्लाम नहीं। ये नहीं कहा कि इसने नमाजें पढ़ी, नमाज तो पढ़ी थी, ये नहीं कहा इसने ये किया, एक मसले में खाली, आप समझ रहे मेरी बात, एक मसले में अगर तुमने अमल किया तो इतना सवाब बाप को है। बेटी को ये नहीं मालूम है, बेटी इसलिए अमल नहीं कर रही थी कि मैं ये अमल करूंगी, मैं मिसाल के तौर पर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी बिकॉज मैं हस्बैंड की इताअत करना है, तो ये सोच के नहीं निकल रही थी कि अगर मैं निकलूँ नहीं निकलूंगी तो मेरे बाप को फायदा होगा, उसे सिर्फ इसलिए नियत थी कि रसूल ने कहा कि अपने शौहर की इताअत करो तो मैं उस रसूल की बात सुन के घर में हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, एक अमल, अगर वही तुमने अपने बच्चे को नमाज पढ़ा दी, वही अपने बच्चे को शब नमाज सिखा दी, वही अपने बच्चे को हमारे मारूफ अच्छे काम बता दिए कि बेटा ये करबला है, ये आशूरा है, ये अरबईन है, ये इमाम अली है, पूरा इस्लाम बता दिया, तो कितना फायदा है कि तुम लेटोगे नीचे, तुम्हारे अमल नहीं है, मेरे अमल नहीं है वैसे, लेकिन मेरी बेटी कर रही अमल, मेरा बेटा कर रहा, मैं तो गुनाहगार हूं, तो लहत बंद हुई, वो सारे अमल का रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। और सिर्फ ये बेटी का नहीं, अब सुनो इसका और फायदा, और सुनो फायदा कि कितना फायदा है कि एक बेटी नहीं, उस बेटी ने, तुम्हारी एक बेटी या तुम्हारा एक बेटे ने अपनी औलाद को सिखाया, वो औलाद ने अपने औलाद को सिखाया, उसने अपनी औलाद को सिखाया, ये जनरेशन तक चला, तो जितने लोग तो उस तुम्हारी फैमिली में हजारों लोगों ने अमल किया इस्लाम पे, मिसाल के तौर पे हजारों तुम्हारी औलाद, ग्रैंड 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 चिल्ड्रन ने मिसाल के तौर पे सिर्फ नमाजें पढ़ी, मिसाल दे रहा हूं, तो वह सारे सजदों का सवाब वो माँ बाप को मिलता। आप सोचने में क्या बोल रहा, जिसने पहला अमल किया, जिसने पहली ईंट लगाई, उसको अजर मिल, कि बिकॉज ऑफ हिम ये पूरा ये जनरेशन दीनदार है, तो कितना फायदा है। व्हाट आई एम गोइंग टू लूज, अगर मैं बच्चों के साथ बैठता तो मैं लूज क्या कर रहा, मेरी ये समझ में नहीं आता आज तक। व्हाई डोंट यू, मैं जनरल बात कर रहा, आपके लिए नहीं पता, मैं सिर्फ बॉम्बे रिजवी कॉलेज की मदीस नहीं पढ़ रहा, मैं पूरी दुनिया में ग्लोबल मैसेज दे रहा हूं, कि क्या फर्क पड़ता, लिटरली आप यकीन करो मेरी बात है, लिट में यकीन करो मेरी बात, यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी, यू नो समटाइम्स आई रियली क्राई जब हालात को देखता हूं कि किस हालात में हो गई हमारी कम्युनिटी, किधर जा रहे हैं, वेयर दे आर गोइंग, हर वो काम कर रहे जो इस्लाम मना कर रहा, फिर अपने आप को शिया बोल रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या होने वाला है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो अभी आपने सुना कि पूरा जनरेशन को उसने माफ कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह तो बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले, मोमिन मैं ऐलान कर दूँ फिर खबर इसके कि मैं भूल जाऊँ, 12 सितंबर थर्सडे 12 मुहर्रम शाम में 5 बजे खोजा आराम बाग में मजलिस है लेडीज़ एंड जेंट्स की, इस मजलिस को मैं एड्रेस करूँगा बरज़ख के टॉपिक पर, मुखी फैमिली आपसे उम्मीदवार है। 13 सितंबर फ्राइडे एट 1:30 आफ्टरनून मजलिस मुग़ल मस्जिद में होगी, ईरानियन मस्जिद जो है, ओनली जेंट्स आफ्टर मजलिस न्यास का इंतज़ाम है, इस मजलिस को भी मैं एड्रेस करूँगा। 15 सितंबर संडे का दिन है, कमिंग संडे, चलो जवारो सिलवासा के लिए ये बसेस का इंतज़ाम हुआ है, बाहर उनका काउंटर लगा हुआ है और लेडीज़ जेंट्स सब है और वहाँ पे ज्यारत के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उस मजलिस को और ज्यारत मैं ही एड्रेस करूँगा। और एक कल का प्रोग्राम, कल शबे आशूर है, मजलिस तो नॉर्मल है, इसी तरह 9:20 पे मैं मेंबर पे आऊँगा और मजलिस के बाद फिर 11:30 पे एक मजलिस होगी और उसके बाद नियाज़े हुसैन है यहीं पर, फिर रोज़े आशूर के प्रोग्राम आमाल होंगे, मौलाना शेख अब्बास इस्माइल एट 11 o'clock यहाँ पे आमाल कराएंगे, नमाज़े आमाल है रोज़े आशूरा, और उसके बाद फिर जहरैन की नमाज होगी, नमाज के बाद मौलाना जाफ़र अब्बास साहब की मजलिस होगी फॉलोड बाई फाखा शिकानी, और शाम गरीबां की मखसूस मजलिस यहाँ पे होगी ट्यूसडे के दिन, आशूरे के दिन मगरिब की नमाज जमात के साथ होगी, इमीडिएटली उसके फौरन बाद इंशाल्लाह शाम गरीबां की मजलिस होगी, इस मजलिस को मैं एड्रेस करूँगा, और मजलिस के फौरन बाद साइलेंट जुलूस यहाँ से निकलेगा जो काटा रोड तक जाएगा, हर साल की तरह लेडीज़ जेंट्स सब रहेंगे, कैंडल लाइट जुलूस है ये, उसमें भी शिरकत कर लेंगे। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। दोस्तों वक्त निकल गया, आधे घंटे की मजलिस हो गई, मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर बाकी है बचा हुआ। तो अगर तुमने काम किया और आपके साथ बैठ गए, ये सलाम जरूर सिखाओ आज से कल से। अब आशूरे का दिन आ रहा, ये मासूम बच्चे तो इमाम की ज्यारत नहीं पढ़ सकते, ये मासूम बच्चे। तुम जब ज्यारत या आशूरा पढ़ना, यहां पे भी अगर आमाल को जब आना तो सबको बच्चों को लेके आना, खाली नहीं आना। क्यों आना बच्चों को लेके? बच्चों को मालूम होना, उनको मालूम होना कि आशूरे के दिन इस तरह आमाले आशूर होते। तो आशूरे के दिन बच्चों को एक ही चीज सिखाओ, आशूरे सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला। ये गोल्ड की माइन है जो मैं आपको दे रहा हूं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप ट्राई करके देखो, जस्ट ट्राई एंड सी, ये गोल्ड की माइन है। अगर तुम्हारा बच्चा 24 घंटे जान जा रहा, खेल रहा, कूद रहा, इमाम को सलाम कर रहा, या सुबह में सलाम कर रहा, या आफ्टरनून में सलाम कर रहा, या रात में सलाम कर रहा, तो आप क्या समझ रहे हैं? हुसैन उस करीम का नाम है कि सलाम के बाद हुसैन फिर अता भी करेगा तुम्हारा। आदत पड़ेगी, बच्चों को आदत पड़ेगी। मुहर्रम शुरू होगा तो बच्चे बोलेगा सलाम अल हुसैन, उसके शऊर में, उसके कॉन्शियस में हुसैन आ जाएगी। फिर देन यू डोंट नीड टू वरी, जब इस्लाम आ जाएगा। और अगर ये पेरेंट्स बैठ के बात करना, पेरेंट्स ऑलवेज दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू टॉक। एक दिन माँ बैठ रही, एक दिन बाप बैठ रहा, संडे के दिन, और बड़ी हेल्थी डिस्कशन, 5 मिनट 10 मिनट दूसरी बातें जब करते ना, उसके साथ बीच में लाना, ला के बच्चों को इतना तैयार करना कि जब बेटा या बेटी कोई इवेंट हो, कोई जैसा मिसाल के तौर पर 13th रजब आती, 13th रजब इतना बड़ा दिन है कि इमाम अली की बर्थडे, तो वो बताना एक दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चों को बताना कि देखो बेटा 13th रजब इज कमिंग। You know what is 13 Rajab? It's the birthday of Imam Ali. And who is Imam Ali? Bacha puchega. So you can explain that he is our first Imam. Inki mahabbat, inka love humare liye bahut must hai. Just talk about Ali for 5 minutes, for 10 minutes. Now Muharram khatam hone ke baad Arbaeen aayega. Ab Arbaeen se pehle bachchon ko batao ki ye Chehlum hai, ye bahut bada event hai. Karbala ke pictures batao. Bata ke bole dekho beta Arbaeen mein. Whenever you get chance, we will go there. And when you get chance, you go. इस तरह बच्चों को तैयार करो। उसके बाद 17th रबीउल अव्वल आती, 17th रबीउल अव्वल 2 सादिकैन की बर्थडे है, अल प्रॉफिट की बर्थडे, 6th इमाम की बर्थडे। एक दिन पहले से बच्चों को बताओ कि बेटा देखो बर्थडे आ रही, उसमें क्या करना है। ये मासूम बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि गिफ्ट देना, गिफ्ट देना। ये यूरोप अमेरिका में दिस इज़ वेरी कॉमन कि क्या करना, बच्चों को स्मॉल गिफ्ट दो। उनको बोलो गिफ्ट इसलिए दे रहे कि आज प्रॉफिट की बर्थडे है, आज इमाम अली की बर्थडे है, आज इमाम हुसैन की बर्थडे है, गिफ्ट दो तो बच्चों को याद रहता। इस तरह बच्चों का ब्रॉट अप, बच्चों का रेज तुम इस तरह करो कि उनके जहनों में, उनके कॉन्शियस में, उनके ब्लड में कोई और चीज नहीं रहना सिवाय अहले बैत के। अगर अहले बैत उनके कॉन्शियस में आ गए, उनके ब्लड में अहले बैत आ गए, तो उसके बाद तुम्हारा बेटा या बेटी कहीं जाए, और आपको मालूम है इतना फायदा और होता कि लड़की अगर मजबूत हो जाए, गर्ल मजबूत हो जाए, तो उसका फायदा यह होता शौहर अगर इधर उधर जा रहा भी तो लड़की लेके वापस दिन पे आ जाती। You understand what I said? I know आप खामोशी सुनेंगे आज। फायदा आपका है। बीवी अगर चेंज कर दे शौहर को, कितने वाकयात में बॉम्बे के बता सकता कि शौहर दीनदार नहीं था, लड़की दीनदार थी, वाइफ उसकी दीनदार थी। उसका नतीजा यह हुआ कि शौहर इतना दीनदार हो गया, इतनी मदरसों में आ रहा, नमाज शुरू कर दी। आप सोचो तुम्हारा सन इन लॉ नमाज पढ़ रहा, तुम्हारा दामाद नमाज पढ़ा, तुम्हारा जमाई नमाज पढ़ा, मिसाल दे रहा, फायदा किसको हो रहा? फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को। तुम्हारी बेटी ने सिखाया ना, इसलिए उसको फायदा हो रहा। तो आप ये मैं इसका बेनिफिट भी देखो। अल्लाह जो बोल रहा कि आग में डाल दूंगा, हर को नहीं डालेगा। इफ यू डोंट डू एनीथिंग, कल का याद है वाकया सैयद रजी का। आप इमेजिन करो, सैयद रजी ने नजुल बलागा को कंपाइल करके हमको ये गोल्डन गिफ्ट दे दिया, तो क्या इसका सवाब सिर्फ सैयद रजी को मिल रहा? नहीं। आप नजुल बलागा में से इमाम अली की एक सेइंग पढ़, जस्ट वन सेइंग, एक सेइंग पढ़ने से क्या हो रहा, कितना फायदा हुआ? हमने एक सेइंग पढ़ी, अल्लाह ने सैयद रजी को अजर दिया, इमिडिएटली उनके माँ बाप को अजर दे दिया। अब मैं अपना एक वाकया सुनाता आपको। मैं पटना में मजलिस पढ़ने गया था अय्याम अज़ा के अलावा। सैटरडे मेरी शायद मजलिस थी या संडे मजलिस, नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी रात में। कक्षा में फ्लाइट की पटना से, तो वहाँ पे जब वहाँ के लोगों को मालूम हुआ कि आई एम इन पटना बिहार, तो वहाँ पे एक जगह है चंदन पट्टी, जो बिहार के लोग इस वक्त मजलिस में वो जानते होंगे, चंदन पट्टी एक जगह है। प्लीज़ गौर से सुनो, तरबियत औलाद के लिए बेहतरीन वाक़या है। मैं चंदन पट्टी, उन लोगों से रिक्वेस्ट आई, मैं एक डॉक्टर की फैमिली में ठहरा हुआ था, डॉक्टर थे पटना में मेन सिटी में, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना आपकी फ़्लाइट शाम में है और हमारी ये मजलिस कल दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्या आप जाएंगे चंदन पट्टी में? वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ। तो मैंने पूछा कि कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा 2 घंटे या 3 घंटे की ड्राइव है, मुझे याद नहीं है, अभी 2 साल पुरानी बात है। आई सेड कि मैं तो फ्री हूँ, मेरी फ्लाइट तो नेक्स्ट डे, और मजलिस जो मजलिस पढ़ने में आया वो मजलिस तो मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चंदन पट्टी की तरफ निकल गया। रास्ते में मैंने पूछा कि चंदन पट्टी है क्या, तो उन्होंने मैंने पूछा किसका गाँव है, विलेज किसका है, सुनेंगे आपको यकीन आएगा, उन्होंने कहा ये मौलाना फरमान अली साहब का। समझ में आई फरमान अली साहब कौन है? फरमान अली कौन है? 18th century, हम 19th century में, वो 18th century या अर्ली 18th century, वो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट ये मालूम है कि 18th century। 18th century में आप इमेजिन करो, ब्रिटिश रूल था इंडिया में और बिहार कितना रिमोट स्टेट है, तो वहां पे मेन सिटी पटना से 200 माइल्स अंदर छोटा सा गांव था चंदन पट्टी। लाइट इवेंट, प्लीज गौर से सुनना, मेरा कंप्लीट मैसेज है रिजी कॉलेज बॉम्बे की तरबियत औलाद की 8th मजलिस का, प्लीज गौर से सुनो, माँ बहनों को भी बोल रहा, रिमोट एरिया चंदन पट्टी उस जमाने में 18th century में, और लाइट सिस्टम भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, बॉल पेन भी नहीं है, कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। वहाँ पे एक छोटी गरीब, प्लीज गरीब फैमिली थी, उनके बेटे का नाम फरमान अली था, और वहाँ पे सारे मुसलमान रहते थे, तो उनके इनके फ्रेंड, इनकी एज थी, इनकी डेथ हुई है 42 ईयर्स में, मैंने इनका पिक्चर देखा है, मुझे पिक्चर भी बताए थे, तो इनकी डेथ हुई है 42 ईयर्स में, और इनकी ग्रेव जो है चंदन पट्टी में नहीं है, मैं मुजफ्फरपुर एक जगह है बिहार में, वहाँ पे इमाम बरगाह के बाजू, मस्जिद के बाजू इनकी ग्रेव है। तो उस वक्त जो तमाम मुसलमान थे, उन लोगों ने कहा यार ये जो शिया लोग हैं ना, राबजी लोग, इनके पास हाफिज़ कुरान कोई नहीं होता, कुरान के हाफिज़ इनके पास कोई नहीं होते, इनकी एज है 18 से 20 ईयर्स। इनको बहुत बुरा लगा कि मेरे रिलीजन को बोला, इमाम अली के शियों को बोलते हैं कि हाफिज नहीं होते। देन ही स्टार्टेड रीडिंग कुरान, पढ़ने लगे, पूरे कुरान को बाई हार्ट किया, हाफिज बने 5 साल के अंदर, कुछ नहीं बोला किसी को। 5 साल के बाद जब हाफिज हो गए, तो मस्जिद में गए, मुसलमानों की जो मस्जिद है, दोस्त जो इनके फ्रेंड्स हैं कल थे, उनसे कहा, वो जो हाफिज थे फिर बैठ के डिस्कस करने लगे, यार तुम लोगों के पास कोई कुरान का हाफिज नहीं होता। इन्होंने कहा तुम ये कैसे बोल रहे नहीं होता, हाउ यू नो? तो कहा आज तक तो कोई देखा ही नहीं। कहा मैं स्टार्ट करूं? तो उसने कहा वो ये समझ रहा ये शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम से शुरू नहीं किया, पीछे से शुरू किया, पीछे से व नास से शुरू किया। पढ़ता हुआ ये बंदा अलिफ लाम मीम तक आया, दे वाज शॉक। उसके बाद इस बंदे ने उस कुरान की तफसील लिखी, तफसीर, यू नो तफसीर, कुरान की तफसीर लिखी। 100 ईयर्स से, ये कैसा इसको शौक है मैं अभी बताता आपको, 100 ईयर्स हो गए आज, पूरी दुनिया फिर बोल रहा, होल वर्ल्ड, इवन जो आपके भावनगर में वो जो काम किया उन्होंने गुजराती में, क्या नाम है उनका, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, हाजी नाजी, उस बंदे को भी जो मिला है, इनसे मिला है, हाजी नाजी ने जैसा कहा, मैंने भावनगर में बोला ये बात कि जितने भावनगर के हमारे खोजा भाई है, तुम्हारे लिए तो एक आइडियल है हाजी नाजी, हाजी नाजी ने भी पार्टीशन से बिफोर काम किया है, मैं उनकी लाइब्रेरी गया हूँ। ही हैज वर्क, आज की तरह नहीं है, अब रिलैक्स हो गए बैठे हुए, हु केयर्स बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ मनी। पैसा तुम्हारा सब यही रह जाएगा, तुम्हारा बेटा दीनदार नहीं निकलेगा तो अजाब तुम्हार पर होगा, ये पैसा आके वहां पे नहीं बचाएगा, पैसा आके लहर में नहीं बचाएगा, तुम्हारा बेटा बचाएगा, तुम्हारी बेटी बचाएगी। तो फरमान अली साहब 100 ईयर्स पहले 18th century में लाइट नहीं, करंट नहीं, कंप्यूटर नहीं, बॉल पेन नहीं, इस बंदे ने कुरान की तफसील लिखी, पूरी तफसील लिखकर आज 100 साल में पूरी दुनिया में अगर कुरान उठाए तो फरमान अली है। क्या बोल रहा है यार, फरमान अली है। आप सोचो यार, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में ये कुरान इनका प्रिंट हुआ, मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में कुरान प्रिंट हुआ, प्रिंट होकर मार्केट में आया। कोई एक आदमी भी, एक बच्चा भी खाली कुरान को खोल के देखे, उसका सवाब फरमान अली को है। कुरान को देखकर सूरह अलहम पढ़े, सवाब फरमान अली को है। सूरह यासीन पढ़ा, फरमान उसको है। आप सोचो व्हाट ही हैज डन। मैंने पूरी मजलिस चंदन पट्टी में फरमान अली के ऊपर पड़ी थी, वो लोग दे गॉट क्रेजी। उनकी ग्रैंड डॉटर से मेरी मुलाकात हुई थी, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर थी शन। उन लोगों ने कहा आज तक किसी ने हमारे ग्रैंड फादर पर मजलिस नहीं पड़ी। मैंने चंदन पट्टी वालों को बोला, वहां पे ब्लंटली बोला, मैंने बोला यार तुम लोगों के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि फरमान अली साहब ने इस शहर का नाम रोशन कर दिया। आज पूरी दुनिया में वैंकूवर में जाओ, ऑकलैंड चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान में आओ, दुनिया के किसी हिस्से में, उर्दू वर्ल्ड में, उर्दू वर्ल्ड में अगर कुरान है तो फरमान अली का। उसके बाद कई लोगों ने कुरान की तफसीर करी, मकबूल अहमद साहब का कुरान है, उसको आजकल बेहतरीन तफसीर जो है कुरान की सूरह नमूना जो है वो भी है, जिशान हैदर जवादी मरहूम ने कुरान की तफसीर की, कई लोगों ने की, लेकिन पहली तफसीर आप सोचो कि अब ये स्टार्ट कैसे हुआ पता है आपको? वो रिमोट एरिया में जब 20 फरमान अली ने आगे अपने पेरेंट्स को कहा कि आज हमारे शियों के ऊपर ये एलिगेशन है, तो माने 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 बच्चे को बिठा के कहा फरमान अली को कि बेटा तुम करो। इसने कहा माँ हाउ कैन आई डू। माँ ने उसको हक किया, बेटे को प्यार किया, कहा बेटा, बाप ने कहा बेटा डू इट फॉर मी, मोटिवेट करना बच्चे को, यू लव मी ना, डू समथिंग। फिर माँ ने क्या किया, इनको पढ़ना भी नहीं आता था, माँ ने क्या किया, खुद बैठ के पढ़ाना शुरू करी, कुरान पढ़ाई। पढ़ाने के बाद इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया, ही सेड कि आई विल डू इट। जब इसने कुरान को याद कर लिया, पूरा तफसील लिखने लगे, तो इन्होंने पहले कुरान को डेडिकेट किया था अपने माँ बाप को कि उनकी वजह से आज मैं ये स्टेज पे पहुंचा। तो अब आप सोचो, सिर्फ फरमान अली को सवाब नहीं है, सिर्फ फरमान अली को नहीं मिल रहा, आज पूरा सवाब उनके पेरेंट्स के अकाउंट में। दुनिया में बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, बूढ़ा भी कुरान पढ़ रहा, जब फरमान अली साहब का कुरान खोल रहा है उसको सवाब मिल रहा है। तो कोई काम ऐसा करो यार, ऐसा करो, मैं यही तो बोल रहा, बच्चे सिर्फ एक काम ये नहीं है कि कुरान तो हो गया, अब कोई दूसरे काम करो। अब मैं आपको एक और आइडिया देता कि इसमें आपको सवाब मिलने के लिए, आशूरा तो गुजर गया, बॉम्बे में इतने बड़े इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, हमारा अरबईन का इतना बड़ा इवेंट है, अगर गूगल पे जाके चेक करो, मैं यूथ को बोल रहा हूं यह बात, पूरी दुनिया के गूगल पे चेक करो तो मोस्ट पीसफुल गैदरिंग कहां की आती, करबला। यह हमारे लिए प्राउड का मकाम है कि हम उस रिलीजन को बिलोंग करते कि जो पीसफुल रिलीजन है, इसलिए कि इमाम हुसैन का मैसेज ही पीस का है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, पीस का मैसेज दे रहे। तो इतना बड़ा इवेंट है अरबईन का, क्या कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में आ रहा, प्रिंट मीडिया में आता है क्या, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे आता है कि इतना? देखिए आप उर्दू चैनल्स की, मैं शिया चैनल्स की बात नहीं कर रहा, जो शिया चैनल है वो शिया देखते हैं, मैं बड़े चैनल्स की बात कर, एक न्यूज नहीं है, वन सेकंड की न्यूज नहीं है बीबीसी पे, वन सेकंड की न्यूज नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, इसके बारे में कल बोलूंगा क्या करना है आपको, आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो। लेकिन आज वो इसी से रिलेटेड दूसरी बात बोल रहा, आपके इख्तियार में क्या है, वॉट यू कैन डू इन बॉम्बे, फिर बोल रहा, लिसन प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू कैन डू इन बॉम्बे, यूथ को बोल रहा, माशाल्लाह तुम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, यू स्पेंड 5,000-10,000, एवरीबॉडी इज वर्किंग, माशाल्लाह तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकत दे। एक चीज याद रखो, हुसैन के मामले में जब तुम स्पेंड करते हो ना, तो हुसैन 1,000 times ज्यादा दे देता वापस। कभी इमाम हुसैन के मामले में स्पेंड करने से पहले सेकेंड थाट नहीं देना, शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुमको चुना। क्या बोल रहा मैं, कभी ये नहीं बोलना यार आई हैव टू स्पेंड सो मच मनी, वाई शुड आई स्पेंड, नो, फौरन शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मौला हुसैन ने मेरे पैसे लिए। हुसैन किसी का नहीं रखते, याद रखो, समझ में आई, हुसैन किसी का नहीं, तुम एक डॉलर स्पेंड करके देखो कि मौला हुसैन तुमको रिटर्न कैसे करते हैं, शुक्र अदा करो। अब मैं यूथ को बोल रहा, आखिरी बात है मेरे, यूथ को बोल रहा, व्हाट आई एम सेइंग के स्पेस खरीदो न्यूज़पेपर्स में, 100,000 हो रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा पेपर है, 100,000 उसकी पब्लिकेशंस, मिसाल दे रहा, मुझे नहीं मालूम, इंडिया का बड़ा पेपर है ना, गुजराती पेपर नहीं खरीदना, वो लोकल हो जाएगा, इंटरनेशनल पेपर लेना, इंग्लिश पेपर लो, संडे टाइम्स लो, जितने इंग्लिश पेपर्स हैं उसमें स्पेस खरीदो। अभी से 40 days है तुम्हारे पास, यू हैव गॉट 40 days नाउ, जस्ट मालूम करो कि इतने इंचेस की स्पेस में कितने पैसे, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे लो, जैसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, लेकर अरबाइंड हेडिंग, इमाम हुसैन एंड अरबाइन, ब्यूटिफुल, अच्छा, पीसफुल, मौला हुसैन का आर्टिकल लिखवाओ किसी मौलाना से, डोंट कम टू मी बिकॉज मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, तो यहाँ इतने मौलाना लोग हैं आपके, अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ इमाम हुसैन, ट्रेजिडी ऑफ करबला, वाई वी गो टू अरबईन टू इमाम हुसैन हरम, श्राइन को हम क्यों जाते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ आशूरा, इम्पोर्टेंस ऑफ अरबईन, स्पेस खरीद के पेपर में प्रिंट करो अरबईन के दिन, 100,000 अगर उसकी कॉपीज जा रहे, 100,000, तो वो 100,000 कोई पढ़ेगा, हर इंसान पढ़ता, सिर्फ शिया नहीं पढ़ते, हर रिलीजन का आदमी वो पढ़ेगा। इमाम हुसैन की ताकत ऐसी है, उसमें क्या करो, सेइंग्स लिखो, महात्मा गांधी जी ने जो इमाम हुसैन के लिए कहा, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने, वो लिखो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इमाम हुसैन के लिए, वो लिखो, इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम गोइंग टू हेल्प यू, सरोजिनी देवी नायडू ने क्या कहा वो लिखो, डॉक्टर राधा कृष्ण ने क्या कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो लिखो, सेइंग सब पूरे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, इमाम हुसैन के बारे में। आपको मालूम गांधी जी ने क्या कहा था इमाम हुसैन के लिए, गांधी जी ने कहा था जब वो ये चल रहा था इंडिपेंडेंस का, उनकी वॉर चल रही थी ब्रिटिश के साथ, तो जब आशूरे का दिन आया तो गांधी जी की फेमस सेइंग है, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन ने कहा था कि अगर हुसैन के पास जो 72 थे 72, अगर वो 72 मुझे मिलते तो मैं कभी इंडिपेंडेंस करा लेता। क्या सुन रहे यार, लिखो स्पेस। अब इसके चक्कर में ये नहीं पढ़ना मेरा नाम नहीं होगा, मैं 100,000 rupees खर्च करूं, पूरे 10 आदमी का ग्रुप मिलकर 10,000 डालो, 20 आदमी का ग्रुप मिलो 5,000 डालो, बोल ये मत बोलो कि यार मेरा नाम थोड़ी होगा, नो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर नेम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर नेम, इसलिए कि तुम अपने नाम की भीख लोगों से मत मांगो, हुसैन से मांगो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डू समथिंग, लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, अच्छा आर्टिकल लिखो, डिफरेंट पेजेस में न्यूज़पेपर्स में जाओ, स्पेस खरीदो, इस तरह तुम अगर प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन करोगे ना, ये है वो अमर बिल मारूफ। अगर तुम्हारी वजह से कोई एक भी हुसैन की तरफ आ गया तो यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, जैसा फरमान अली का इन्वेस्टमेंट उनके माँ बाप को जा रहा, वैसी तुम्हारा यह इन्वेस्टमेंट तुम्हारी तरफ जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला आबाद रख, बस मौला आबाद रख, मेरे पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। दो चीजें आज बोली, कल आखिरी मजलिस मेरी इस टॉपिक के ऊपर रिजी कॉलेज के इंशाल्लाह 1441 हिजरी तरबियत औलाद 9th मुहर्रम बड़ी रात है, कलरफुल ड्रेसेस में नहीं आना, कल सब ब्लैक में आना और टाइम पे आ जाओ कल की मजलिस के इंशाल्लाह कंक्लूजन है। कल एक आखिरी चीज देता कि कल अजीम मुसीबत की रात आ रही शबे आशूर, आशूरे से लेके अब गौर से सुनो शाम गरीबा से अरबईन तक रोज ज्यारत अरबईन पढ़ो 40 days। मुझे मैं आपको नहीं बोलता इसके फायदे क्या है, 10 मिनट मैं आपसे मांग रहा, ज्यारत अरबईन जो तुम अरबईन के दिन मौला हुसैन की ज्यारत पढ़ते ना, यू स्टार्ट दैट ज्यारत फ्रॉम शाम गरीबा टिल रोजे अरबईन, ये 40 दिन में देखना तुम, 40 days में यू विल सी। मैं मिंबर रसूल से बोल रहा, शबे नौ मुहर्रम बोल रहा, बॉम्बे रिजवी कॉलेज में बोल रहा, मेरी एक एक बात का मैं जिम्मेदार हूं जुमलों का। ऐसा रहमत की शेड आके सब कुछ भी मिलेगा, ज्यारत हुसैन भी नसीब होगी, अरबईन की ज्यारत नसीब होगी। You start reciting ज्यारत अरबईन from शाम गरीबा till अरबईन, तुम देखना इसके कितना फायदा है। दूसरी आखिरी बात, हर साल बोलता हूं, यह साल भी रिमाइंड कर रहा कि शाम गरीबा में दिन भर की थकन होगी, मातम करे हुए थके हुए शाम गरीबा की मजलिस करे हुए घर जब जाना, मैं सबको बोल रहा लड़का लड़की औरत मरद सबको, जब घर जाना थके हुए बहुत है ना, मगरिब इशा तो इमाम बरगा में रिजी कॉलेज में हो जाएगी, बिफोर यू गो टू बेड ऑन शाम गरीबा मौला हुसैन की एक वसीयत पे अमल करना, यू अंडरस्टैंड, एक वसीयत, उस दिन नमाज शब नहीं भूलना, साल भर नहीं पढ़ी तुमने लेकिन शाम गरीबा में नमाज शब इज मस्ट, वाजिब नहीं है लेकिन उस रात में तुम 9 बजे सो रहे, 10 बजे सो रहे शाम गरीबा में, बिकॉज यू आर सो टायर्ड 10 बजे सो रहे। मैं औरतों को भी बोल रहा, बहनों को भी बोल रहा, बच्चों को भी बोल रहा, बड़ों को भी बोल रहा, हाथ जोड़ के बोल रहा, शाम गरीबा में शब नमाज इसलिए पढ़ो कि मौला हुसैन के लास्ट वर्ड्स जो है, आखिरी जुमले जो थे बीबी जैनब और बीबी उम्मे कुलसुम से, वो यही थे कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। एटलीस्ट तुम ये बोल सकते कि मौला आपकी ख्वाहिश थी, आज आपकी वसीयत शहादत का दिन है और वसीयत पे अमल करना लाजिम है, मौला मैं नमाज शब पढ़ा, 3 रकत पढ़ो, 2 रकत शिफा 1 रकत वितर, अगर पूरी 11 रकत नहीं पढ़ सकते लेकिन उस रात की, और ये नहीं करना कि सिर्फ मैं पढ़ रहा, मैं 10 दिन के बाद इतना चेंज तो आप में आना कि वह क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम व अहलीकुम, औलाद 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 औलाद, योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को साथ लेके पढ़ना, माँ की जिम्मेदारी की लड़की को लेके बैठे, लड़के को लेके बैठे, बाप ये बोले कि बेटा हम लोग सब मिलके फैमिली मिलके नमाज पढ़ेंगे, खुद लीड करो, बच्चों को पीछे खड़ा, तो बच्चों को आदत होगी, हर साल तुम जिंदा रहो या तुम मर जाओ, हर साल शाम गरीबा में, शाम गरीबा के दिन क्या करेंगी औलाद, वो नमाज शब पढ़ेगी, जब तक औलाद तुम्हारी नमाज शब पढ़ती रहेगी वो पूरा अजर तुमको मिलता जाएगा। ये सोचो मैं इतने आपको मोटिवेट कर रहा कि प्लीज शाम गरीबा में घर में जाके नमाज शब नहीं भूलना। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले, क्या है ये, ये क्या है, कई के लिए सेलेक्ट कर एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं, 2 लेडीज हैं मिसेस शहनाज एंड मिसेस शुगफ्ता, ये लोग सेलेक्ट हुई हैं बिकॉज दे आर वर्किंग एज ए वॉलंटियर्स यहाँ पे, और मिसेस रुबीना रिजवी एंड मिस्टर अख्तर रिजवी ने करबला के लिए ये दोनों ख्वातीन को सेलेक्ट किया है। ये हर साल ये लोग रिजवी फैमिली जो है 2 लोगों को भेजती है ज्यारत पे अपने पर्सनल फंड से, تو مسز شہناز اینڈ مسز شگفتہ خاتون جو ہے اللہ ان کو امام مددی کہہ سکتا میں کہ اور اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے اور ان لوگوں کو اجر عظیم دے جو زیارت کو بھیج رہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستوں میں نے مدیس ختم کر دی, میرا ٹائم ہو گیا, زیادہ ہو گیا آج ٹائم, ٹاپک اتنی واسٹ ہے. کل کی آخری مجلس انشاءاللہ 9:20 ممبر پہ آؤں گا. آج 9 محرم ہے کی رات ہے, ایسی رات ہے یہ کہ کل کا ایک دن بیچ میں ہے, بس جسٹ ون ڈے. کل کی رات جب آئے گی تو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی. کل کی رات بی بی زینب کی زبان پہ یہی جملہ رہے گا کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. آج آہستہ رونے کا دن نہیں, دو دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں, مولا حسین کے خیمے میں ایک ڈراپ واٹر بھی نہیں ہے. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں بچے خالی کوزے لے کے, کبھی حسین کے سامنے جاتے ہیں کبھی مولا عباس کے سامنے. مولا حسین کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میں خیمے کے اندر جاتا تو بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے کھڑے رہتے. ساقی کوثر کا لال ہے حسین, تڑپ کے کہتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. دوستو شب نو محرم ہے, میرا مولا حسین دو دن سے کیا حالت ہو رہی ہوگی پیاس کی وجہ سے. اور آج ہر جگہ ایک ایسے شہید کا ذکر ہے, ایک ایسے شہید کا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. آپ سمجھ گئے, آپ سمجھ گئے, یہ وہ شہادت ہے علی اصغر کی کہ ہر معصوم نے یاد کیا. زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والے نے جب ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ مولا کس شہید کا ذکر کرنا, زاکر نے کہا تو مولا نے بتایا ہر شہید کا ذکر کرو, میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو, ذکر حسین ہر وقت حسین کا ذکر کرو, گریا کرو. اس لیے آج ہمارے سارے مرجع نماز کے بعد بیٹھ کے گریا کرتے. اس کے بعد امام نے کہا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا, ایک وہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا, سمجھ گئے سمجھ گئے, جس کے نام کے علم استاد ہے, جس کا ذکر کل آپ نے سنا, کہا میرے جد میرے جد میرے مولا عباس کا ذکر کرنا. اس کے بعد کہا کہ اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. دوستو کلکتہ میں, میں مدرسے پڑھنے جاتا ہوں کلکتے میں, وہاں پہ ایک جگہ ہے مٹھیا بروج, وہاں پہ کافی شیعہ لوگ ہیں, مسلمانوں کی بستی ہے, وہاں شاہی امام بارگاہ ہے. نواب واجد علی شاہ جو لاسٹ اودھ کے کنگ تھے وہ وہاں پہ آئے تھے اور ان کا مزار بھی اسی امام بارگاہ میں شاہی امام بارگاہ کے نام سے, واجد علی شاہ کا امام بارگاہ مین مٹھیا بروج میں کلکتہ میں. جب میں مدرسے پڑھنے گیا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ وہی امام بارگاہ ہے کہ جہاں سے عاشورے کے دن جلوس نکلتا ہے, اور یہاں سے اولڈ کلکتہ کہلاتا ہے, وہاں سے نکل کے یہ کربلا جاتا ہے جو نیو کلکتہ میں کئی مائلس کا جلوس ہوتا مین جو جلوس ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا اس جلوس میں ماتمی دستے ہوتے, زلجھنا ہوتا. کہا کہ جب یہ زلجھنا ایک ہندو بستی سے گزرتا نیو سٹی میں, جلوس پہنچنے سے پہلے, زلجھنا پہنچنے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ کھڑے رہتے ہندو لوگ, عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی, عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی, جب زلجھنا پہنچتا تو وہ دودھ کو وہاں پہ پیروں پہ ڈالتے. تو ان عورتوں سے پوچھا کہ تم یہ دودھ کا رسم کیوں کرتی ہو عاشورے کے دن, تو ان عورتوں نے کہا کہ میں ہم اس لیے کرتے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا 6 مہینے کا سن تھا, उसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, सिर्फ पानी मांगने पे उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, तो हम उस अली असगर के नाम पे ये दूध बांट रहे। गैर मज़हब के लोग शहजादे की उस मुसीबत को याद कर रहे। दोस्तों, हुसैन का ये वो मासूम बच्चा कि शबे आशूर जब मौला हुसैन रबाब के खेमे में गए, हर खेमे में गए, लेकिन जब रबाब के खेमे में गए तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। पूरा खेमा है, एक झूला है, उसमें अली असगर लेटे हुए। माँ क्या कह रही, अपने माते को झूले पे रख के कह रही, बेटा कल का दिन हर माँ अपनी कुर्बानी को पेश करेगी। अली असगर तुम इतने छोटे हो बेटा कि तुम मैदान में भी नहीं जा सकते, और मैं क्या करूं, मैं कैसे बीबी को सूरत बताऊं। अजीज़ हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बीबी रबाब से इतना ही कहता कि बीबी आपके बेटे का वो वार होगा, वो कुर्बानी होगी कि लोग अली अकबर की जंग को भूल जाएंगे। दोस्तों, ये शहजादे अली असगर की नज़र बहुत बड़ी है। जब भी कोई तुम्हारी दुआ कबूल ना हो, गौर से सुनो, जब भी कोई दुआ कबूल ना हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर आपने नियत करो ये कि मैं, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जनाब अली असगर की नज़र करूंगा। नज़र करने के लिए कोई लाख रुपया नहीं चाहिए। शहजादे की नज़र दूध के ऊपर होती है। एक गिलास में दूध रखो और एक गिलास में पानी रखो, रख के देखो कि अली असगर तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता। यहाँ तक कहा गया हमारे उलमा ने कि मासूम को वास्ता देना, इमाम हुसैन को वास्ता दो रबाब के दोनों बच्चों का, अल्लाह को वास्ता दो रबाब के दोनों बच्चों का। ये वो माँ है कि जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई। करबला में अली असगर शहीद हो गए, शाम में सकीना खत्म हो गई। ये बड़ी मजलूम बीबी है। तो इस बीबी का वास्ता देकर दुआ मांगो, देखो दुआ कैसे होती। औलाद नहीं हो रही, अली असगर का वास्ता देकर दुआ मांगो, देखो अल्लाह तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करता। बस दोस्तों, हुसैन वो दिन गुजरा, पूरा आशूरे का दिन गुजर गया, एक एक शहीद हो गया। आखिर में मेरा मौला मैदान में आता है और आके कहता है, हल नासरुना, अरे कोई है जो मेरी मदद करे। कितना गरीब हो गया था हुसैन, कितना गरीब हो गया। हर तरफ से लब्बैक किया, हुसैन की आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन कयाम हुसैनी से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। हुसैन पलट के खेमे में आए और आकर कहा, जैनब अभी हुसैन जिंदा है। बहन, रोने का सबब क्या है? तो कहा, भैया आपकी आवाज़ पे अली असगर ने अपने आप को झूले से ज़मीन पर गिरा दिया। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो कि आज तुमको रबाब दुआ दे, रबाब दुआ दे। तो हुआ क्या, हुसैन ने कहा, लाओ अली असगर को मेरे हवाले करो। माँ ने ला के रबाब को हुसैन के हवाले, अली असगर को रबाब ने हुसैन के हवाले किया। मेरे मौला ने बच्चे को प्यार किया, कपड़ा डाला, चलना चाहते, फिर माँ ने आके रोका। रबाब ने रोक के कहा, मौला कुछ लम्हों के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले करें। हुसैन ने अली असगर को फिर माँ के हवाले किया। रबाब बच्चे को लेके अंदर गई, लेकिन दोस्तों तुम तड़प जाओगे, जब लेकर आई तो क्या किया, अली असगर को नया कुर्ता पहनाया, आस्तीनों को ऐसे उलट दिया, बालों को सवार दिया। फिर माँ की वो तड़प कहने लगी कि मौला मेरा बच्चा पहली मरतबा मैदान में जा रहा। अजीज़ो अली असगर चले, जब चले हुसैन लेकर आए और लाकर दुश्मनों से कहा कि सुनो मेरा बच्चा प्यासा है, थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। उसके बाद इमाम कहते कि अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने से पानी मैं पी लूँगा, लो मैं अली असगर को जलती हुई रेत पे लिटाता हूँ। अजीजो क्या मुसीबत थी, हुसैन ने अली असगर को जलती हुई रेत पे लिटाया, कहा तुम आके अपने हाथ से पिलाओ, कोई जालिम आगे नहीं बढ़ा। बाप का दिल है, फट गया। अली असगर को उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगा के एक जुमला कहा, कहा कि मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, एक हुज्जत को तमाम करो। तो अली असगर ने सूखी हुई जबान अपने सूखे होंठों पर फेरना शुरू किया कि मैं प्यासा हूं, मेरा बाबा जो कह रहा वो सच है, मैं बहुत प्यासा हूं। बस दोस्तों, उमर साद ने हुरमुला से कहा कि एकता कलाम अल हुसैन, ये हुरमुला वो जालिम है कि जब वो तीर चलाता था तो सात सेवन लोहे की दीवारों को चीरता हुआ इसका
تیر جاتا تھا اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. حسین لے کے کھڑے ہوئے ہیں, آپ سوچو ہرملا نے نشانہ لگایا, اس کے ہاتھ کانپنے لگے. تو عمر سعد نے کہا ہرملا اتنے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا. تو اس نے کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا, جب میں نشانہ لگاتا ہوں تو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. ایک بی بی ہے جو پکار کے کہہ رہی ہے میرا بچہ پیاسا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے, اسے چھوڑ دے. ہرملا کا تیر چلا, حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, خون کو لے کے چہرے پہ ملا, کہا محشر میں نانا کے سامنے جاؤں گا. علی اصغر کو بس مجلس ختم ہو گئی. علی اصغر کو لے کے خیمے میں پہنچے تو دروازے پہ رباب کھڑی ہوئی تھی. رباب نے دیکھ کے کہا کہ مولا میرا بچہ پانی پی چکا. ارے اب حسین کیا جواب دے ماں کو, سر کو جھکایا, جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. رباب نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. بس ابا کے دامن کو ہٹا دیا, ماں نے علی اصغر کو دیکھا, ماں کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی علی اصغر بیٹا کیا تیرے اتنا بچہ بھی مارا جاتا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا علی اصغر میں تیرے غم کو کیسے برداشت کروں, ہائے میرا علی اصغر دنیا سے چل.